खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम पिछले महीने से छठी आयत पर गौर कर रहे थे कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, और हमने मसीही जिंदगी में उन तमाम फायदा की बातों पर, तमाम नहीं कुछ मसीही जिंदगी में फायदा की बातों पर गौर की, और बहुत सी बातों पर जो बेफायदा है उन पर गौर की कि जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं है। और फिर हमने सीखा था कि हम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हम अपने अगला हिस्सा में जाएं, जैसे कल हमने सीखा था 10वीं आयत में से, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। तो आज हम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे कि खुदावंद को क्या पसंद है, किस में उसकी खुशी है, कौन सा काम, कौन सी बात, कौन सा हमारा अमल, हमारी जिंदगी का गुजारना उसे खुश करता है, और किन बातों में उसकी खुशनुदी है। और कल हमने देखा था, इससे पहले कि हम खुदा के बारे में जाने कि उसको क्या पसंद है, हमें इस बारे में जानना होगा कि उसे पसंद क्या नहीं है, वो किन बातों में खुश नहीं होता। आपको याद होगा कल हमने इमसाल उसका छठा बाप उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक का हवाला देखा था। किसी को याद है? आए मेरे साथ निकालें जो नहीं आ सके थे, ताकि उन सब के लिए भी याद दहानी हो कि हमने कल एतवार की इबादत में यह सीखा था कि कौन सी बातें हैं जिनसे खुदा को खुशी नहीं है, जिनसे हमें कोई भी क्या कह सकते हैं मौका नहीं मिल सकता कि खुदा को खुश करें। इमसाल उसका छठा बाप उसकी 16वीं आयत से, यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह ईमानदारों को हिकमत और दनाई की बातें सिखाते हुए कहता है कि हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। छठी 16वीं आयत में लिखा है, छह चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि सात हैं जिनसे उसे कराहियत है। छह बल्कि सात चीजें हैं जिनसे खुदा को क्या है, नफरत है, कराहियत है खुदा से, उनसे उनसे क्या खुदा को खुशी नहीं होती। और हमने कल देखा था, ऊंची आंख, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, और फिर हमने बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, और शरारत के लिए तेज रौ पांव, और फिर हमने देखा था झूठा गवाह, और जो भाइयों में नफाक डालता हो। ये सात बातें हैं जिससे खुदा को खुशी नहीं। इसलिए हम ईमानदारों को एक तजर्बा कार के तौर पर ये तजर्बा करना है, ये इम्तियाज करना है। तजर्बा का लफ्ज जब देखते हैं तो इसके लिए पालूस रसूल एक और जगह पर यही लफ्ज इस्तेमाल करता है, इम्तियाज। इम्तियाज करना, तजर्बा करना, उसमें क्या करना, उसकी तहकीक करना कि उसमें क्या समझ हम रख सकते हैं। तो जब हम तजर्बा करते हैं किसी चीज का, किसी ने भी जब बल्ब बनाया होगा तो उसके लिए उसने तजर्बा किया होगा कि किस तरह इस ग्लास के मकान को बनाकर उसके अंदर लोहे का सामान रखा जाए और किस तरह ये रोशनी दे सकता है। सो हम ईमानदारों को भी हुक्म दिया गया है कि तजर्बा करें, इस बात की तय तक पहुंचे कि खुदा को कौन सी बातें हैं जो खुश करती हैं। सो यहां पर सात बातें हैं जो खुदा को खुश नहीं करती, और फिर खरूज 20 बाब वहां पर हमने 10 अहकाम को देखा था कि वहां पर खुदा क्या कहता है, उसकी इस बात में खुशी नहीं कि उसके लोग, जब खुदा अपनी जात के बारे में कहता है कि मैं गयूर खुदा हूं, तो गयूर से मुराद के मैं गैरतमंद खुदा हूं, मैं अपनी गैरत के लिए, अपने नाम की खातर के लिए क्या करता हूं, सब कुछ करता हूं कि सच्चाई के लिए खड़ा हूं। जब खुदा कहता है मैं गयूर खुदा हूं, तो वो कहता है कि जब उसके बंदे बंदियां किसी और के आगे झुकते हैं तो खुदावन खुदा कहर में आता है, उससे खुदावन खुदा को खुशी नहीं होती। हम सब हुक्मों से वाकिफ हैं, बनी इसराइल के लिए हो खा आज हमारे लिए हो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, पड़ोसी की चीजों का लालच ना करो, नाफरमानी ना करो, बल्कि फरमाबरदारी करो। खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और के आगे तुम सजदा ना करो, किसी और मबूद को तुम अपना खुदावंद ना मानो। जैसे मिस्रियों को खुदा मुल्क मिस्र से निकाल लाया और उनको ये बात याद दिलाई गई थी कि खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना, ना मिस्रियों के बादशाह को, ना कनान के रहने वाले उन देवी देवताओं को, ना मोआब के उन जादूगरों को, ना बाल के पुजारियों को, ना नबूकत नजर को, ना फलस्तीनियों के खुदा को, ना अमालिकियों के खुदा को, ना किसी और खुदा को, ना सूरज ना चांद ना सितारों को, किनको करना? मुझे सजदा करना, सिवाय मेरे कोई और खुदा नहीं। तो जब खुदा कहता है मैं गयूर खुदा हूं, तो उसमें उस जैसा कोई और नहीं। वो अपने नाम की खातर आसमान से जब दुआ को सुनता है तो क्या करता है? जवाब भेजता है। याद है आपको एलिया और बाल के पुजारियों का मामला? बाल के पुजारी पीटते रहे, चलाते रहे, छुरियां चलाते रहे, लेकिन उनका जवाब ना आया। लेकिन गयूर खुदा, गैरतमंद खुदा, जो अपने नाम की इज्जत को कायम रखता है और सदाकत के लिए कायम रहता है, उसने क्या किया? एलिया ने दुआ की और आसमान से क्या हुआ? आग नाजल हुई। आज हम देखेंगे कि क्या खुदा को पसंद है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ उसके हजूर मकबूल ठहरती है, अगर उसकी नजरों में वो पसंदीदा हो। मेरे साथ निकालें पुराने ऐहदनामा से पहला सलातीन, पहला सलातीन उसका 3 बाप। पहला सलातीन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर जबाउन में खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह है, और उसने मिस्र के फ़राउन की बेटी को, जो मिस्र का बादशाह था, उससे शादी कर ली, और अभी तक हैकल नहीं बनी थी, हैकल के लिए जगह नहीं तैयार हुई थी कि जहां पर तमाम कुर्बानियां चढ़ाई जाएं और तमाम ज़बीहे गुजराने जाएं। जब हम तीसरी आयत से पढ़ते हैं तो सुलेमान बादशाह कहां पर है? शहर जबाउन में है। पहला सलातीन उसका 3 बाप, जब हम उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि सुलेमान बादशाह की जिंदगी में खुदा को कौन सी बात पसंद आई, किस बात से खुदावंद को खुशी हुई, किस बात से उसकी खुशनुदी थी। 5वीं आयत से जब पढ़ते हैं, सुलेमान बादशाह, अभी अभी हाल ही में उसने 1,000 सोतनी कुर्बानी गुजरानी है और वो जबाउन में है। जबौन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। ये बहुत ही उम्दा बात है कि जब खुदा कहे कि मांग मैं तुझे क्या दूं, ये बहुत ही उम्दा बात है जब खुदावंद खुदा हमसे कहे, या हमारे बेटे जब होते हैं, बेटियां होती हैं, तो हम बाप या माँ से कहें कि बेटी मांग, तू क्या मांगती है या क्या मांगता है। सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा, और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा जैसा आज के दिन है। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह ख्वाब में ये बातें खुदा से कर रहा है और याद दिलाता है, खुदावन खुदा के ये तेरा बड़ा एहसान है कि मेरे बाप पर तेरी शफकत रही और वो रास्ते से और सदाकत से और सीधे दिल से चलता रहा। और क्या लिखा है, और अब ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया, मैं छोटा लड़का ही हूं और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शौर नहीं है। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह कहता है, मुझे समझ नहीं बाहर आने जाने की, मुझे शौर नहीं है, मुझे तजर्बा नहीं है, मुझे इम्तियाज नहीं है, मुझे फहम नहीं है कि मैं क्या करूं। और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है, वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझ वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, तजर्बा कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं, यानी के बुराई और सच्चाई में उसकी पहचान कर सकूं। सलव तजर्बा, तजर्बा करना, इम्तियाज करना, पहचान करना, समझ करना। यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान क्या कहता है, मुझे दना दिल अता कर, मुझे ऐसा दिल अता कर ताकि मैं समझ बूझ रख सकूं, ताकि मैं बुरे और भले में, बुरे और भले में क्या कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई। जब हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करते हैं तो यहां पर हमें सुलेमान बादशाह की जिंदगी में क्या नजर आता है, वो खुदा के सबसे पहले उस रहम को, उसकी रहमतों को याद करता है कि उसने हम पर रहम किया है, उसकी ये रहमत है कि मेरे बाप को ही उसने बादशाह बनाया और आज के दिन मुझे भी उसने मुकरर किया। जब भी हम खुदा की हुजूरी में जाएं, इस छोटे से जुज को, इस छोटी सी बात को याद रखने की जरूरत है कि इससे पहले कि हम उसके हजूर शिकायत करें, हम सुलेमान बादशाह से सीख सकते हैं कि कैसे मांगे। सबसे पहले उसकी दी गई नेमतों बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसके हजूर याद दिलाना चाहिए कि तूने मेरे लिए ये क्या काम किए हैं। जब मुझे कोई जरूरत होती है तो मैं पता क्या करता हूं, अपने जहन में उस लिस्ट को देखता हूं कि आज से 14 साल 15 साल से खुदावन खुदा मेरे साथ वफादार रहा है और उसने कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। कभी कभार देर से जवाब देता है, कभी कभार एक सेकंड में। तो मेरा दुआ करने का तरीका, खुदावन तू वफादार खुदा है, खुदावन तेरी तारीफ हो, तू भला है, तू अपने लोगों से कोई भी अच्छी भली चीज बाज नहीं रखता। हम ये सब तरीका अपना सकते हैं जैसे सुलेमान बादशाह ने कहा, ना के सीधे ही, खुदावन मेरा मसला ये है, तू सानू छाड़ दिता, तू सड़ना लाया कीता, ओ कीता। सुलेमान बादशाह खुदावन की रहमतों को, उसकी नेमतों को याद करता है। और ये बात 10वीं आयत में क्या लिखा है, और ये बात खुदावन को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरखास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते हिकमत की, अकलमंदी की दरखास्त की है। याद है आपको पिछले दिनों में कहा था कि अगर आप अपनी दुआओं का जवाब चाहते हैं तो बजाय अपने लिए दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें। यह बहुत ही गहरा मुकाशफा है कि बजाय अपने लिए आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो खुदावन खुदा आपके मांगने से पहले आपको दे देगा। मैं अपनी जिंदगी में यही करता हूं, अपने लिए जब भी दुआ करता हूं खुदावंद हिकमत और दनाई दे ताकि तेरी मर्जी को जानूं कि क्या है। तो खुदावंद को ये बात पसंद आई और खुदावंद ने उसे क्या कहा कि हाँ इस बात से मुझे खुशी है। सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैं एक आकल, आकल से मुराद अकलमंद, आकल और समझ वाला दिल तुझको बख्शा ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बरपा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। देखें कितना खुदा वफादार खुदा है। उन वादों को हम याद कर सकते हैं कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। उन वादों को याद कर सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि आसमान के परिंदों को देखो, ना खाते हैं ना उनके रहने की जगह है, तब भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, और वो तुमको क्यों ना खिलाएगा, क्योंकि तुम उसके हो। अपने सारे बोझ को खुदावन पर छोड़ दो, वो हमें संभालेगा। सो यहां पर जब हम मांगते हैं कि खुदावन खुदा इस मकसद के लिए दे, तो उसके साथ क्या होता है? और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। याद रखें, कभी ना कहें कि मैं भूल गया, मैंने कहीं मांगा। खुदा जानता है हर एक तफसील के साथ बाल को जो हमारी जिंदगी में है, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आयन और अहकाम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। फिर सुलेमान जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सोखनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती के की कुर्बानियां चढ़ाई और अपने सब मुलाजमों के साथ मुलाजमों की जियाफत की। इस कहानी में जो सच्ची कहानी, जो वाकया ही तारीख बयान करती है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, लेकिन हमें मांगने का ढंग आना चाहिए। हम बहुत दफा मांगते हैं उल्ट तरीका से। हम वो मांगते हैं जो हमारी ख्वाहिश है, वो नहीं मांगते जो हमारी जरूरत है। अगर हम खुदा से हिकमत मांगेंगे तो खुदा हमें जमीन पर हिकमत के बायस क्या बना सकता है? बाइबल मुकद्दस में कल एक मैं हवाला पढ़ रहा था कि अगर तू खुदा से हिकमत मांगे तो वो हिकमत तुझे 10 समझदार बादशाहों से ज्यादा जोरावर बनाएगी। अगर 10 बादशाह हो और उनको हिकमत ना हासिल हो, तो उस बादशाही का क्या फायदा? सुलेमान बादशाह कहता, अगर तू खुदा से दुआ करे और उससे हिकमत मांगे तो वो 10 बादशाहों के इख्तियार से बेहतर है। सो हमें दुआ करने की जरूरत है आकल दिल के, हम इम्तियाज करें खुदा को क्या पसंद है। मेरे साथ एक हवाला निकालें और इस पर हम खत्म करेंगे। दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 9 आयत। पालूस रसूल यहां पर जमीन पर रहते हुए आसमान की बातों की ख्याल में है कि वहां पर क्या होगा। दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 9 आयत। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वा जला वतन, उसको खुश करें। जमीन पर हैं या आसमान पर हैं, किसको खुश करें? खुदावन खुदा को। खुदावन खुदा की खुशनुदी इस बात में है कि जब उसके लोग उसके हजूर खाकसारी से दुआ करेंगे तो वो आसमान पर से सुनेगा, उनके गुनाहों को, उनकी तारीखों को दूर करेगा और उनके मुल्क को बहाल करेगा। तो आज सादा तौर पर इस कहानी में से, इस वाकया में से जो हमने पढ़ा कि हम इम्तियाज करें, मालूम करें, जाने के खुदा को क्या पसंद है, अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए बरकत चाहना शुरू करें। अपने लिए हिकमत, अपने लिए खुदा की मर्जी को पुकारना शुरू करें, फिर देखेंगे कि हम किस तरह इस जमीन पर बाबरकत लोग होंगे। हम पहले ही बाबरकत हैं, हम पहले ही शहनशाहों के शहनशाह के बेटे और बेटियां हैं। इस बात पर हम पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आपका हक क्या है? खुदा की बेटियां। आपका हक क्या है? मेरा हक क्या है? खुदा के बेटा, खुदा का फर्जंद। सो आए हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें।